તારીખ 15/5/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 4 અને 5 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 7 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
संसार में जो भी प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, ऐसा सहज परिणाम होने का पता चल रहा है. ऐसे संसारी जीवों को सदात्म स्वभाव में एकत्र होना दुर्लभ है. दुर्लभ वो नहीं है, ये विषय का क्यों क्यों दुर्लभ है. आत्मा स्वभाव से तो एकत्व रूप अंतरंग में है, इतना ही नहीं सदा प्रकट ही है. क्योंकि आदंत अवस्था को आता है शक्ति को आदंत होने का सवाल. फिर भी कषाय चक्र कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है अपने आप को. कषाय के साथ तन्मय भाव से परिणत किया जाता है, इसलिए अत्यंत प्रिय भाव को प्राप्त हुआ है. अपना आत्मा अत्यंत दब गया है और अपने में अनात्मता होने से अनात्मपणा स्वयं आत्मा को न जानने से या अपने स्वरूप के विषय में अनुभिज्ञ होने से और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगता संगति और सेवा न करने से. अन्य जब आत्मा को जानने वाले हैं उनकी उपासना नहीं की, संगति सेवा का अर्थ किया है उनकी उपासना नहीं की है. निर्मल विवेक महापूर्ण स्वस्थ अनात्म पर आत्मज्ञान उपासना नहीं की. स्वरूप की तो उपासना की जाती है लेकिन दूसरों की भी क्या उपासना की जाती है. उपासना शब्द रखाया जाता है कि आत्मा के जानने वालों की उपासना का भाव आए बिना आत्मज्ञान से अध्यात्म विद्या को समझ सकते हैं. और ऐसी विद्या का परिणाम भी हो सकता नहीं. यही कारण है
समझ सकते नहीं तो समझ सकते नहीं.
हाँ ग्रहण
तो
कहां से प्राप्ति जिसको चाहिए उसे ज्ञानी की इच्छा से वर्तना ऐसा घिनात्मवादी सर्वशास्त्र कहते हैं. अपनी इच्छा से प्रवर्तता हुआ अनादिकाल से परिभ्रमण किया जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा से उपरोक्त मैंने नहीं लिया. जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा से इच्छा मैंने आज्ञा से इच्छा और आज्ञा में दो वर्तन नहीं करना, मैं वर्तने में आवे वहां तक ज्ञान की निवृत्ति होना संभव ही नहीं है। और नानी की आज्ञा का पालन आराधन उपासना वह जीव कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके उसकी अधिकता छोड़ करके यानी कि भक्ति में लगता है जुड़ता है वो आज्ञा का पालन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकेगा, वो एक मानेगा दूसरे नहीं मानेगा, वो बात ठीक है वो बात नहीं ठीक है ऐसा करेगा। यद्यपि ज्ञानी भक्ति को चाहता परंतु मोक्षाभिलाषी को इसको आत्मा से नहीं लिया, मोक्षाभिलाषी को ऐसा किए बिना उपदेश परिणाम को प्राप्त होता उपदेश परिणाम का नहीं और मनर और निधि ज्ञान संघ का भी हेतु होता नहीं, परिणाम का नहीं रुकना ही नहीं, उसको मनन भी नहीं होगा, मनन भी संसार का चलेगा। इसलिए मनुष्यों को ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, सत्पुरुषों ने कहा है उतना ही नहीं, लेकिन यह कही हुई बात सर्वशास्त्र ने मान्य है, सर्वशास्त्र को मान्य है, एक भी शास्त्र इससे विरुद्ध नहीं कहता, एक आगम भी इससे विरुद्ध भगवान ने 98 पुत्रों को त्वरा से मुख होने में यही उपदेश किया था, लेकिन 98 पुत्रों को जो हो भरत बाहुबली को छोड़ करके 100 पुत्र में से भरत बाहुबली जी को छोड़ देने तो 98 पुत्रों को त्वरा से मुख होने में क्या उपदेश दिया था कि तुम सत्पुरुष की उपासना करो, उपदेश दिया होगा आत्मा ने बताया होगा, ये प्रगत आत्मा तो है, सत्पुरुष तो प्रगत आत्मा है, प्रगत आत्मा है कहना क्या दिखा दिया, एक बात बोलना और एक बात दिखाना में केवल बड़ा फर्क है, बोलने में तो सुनने में समझे नहीं समझे, दिखाने में तो नहीं समझे ऐसा बने, परीक्षित राजा ने भी सूर्यदेव जी को यही उपदेश किया था, वो तो ऐतिहासिक दृष्टांत देते हैं अपने बात को मजबूत बताने की मजबूती बताने के लिए, गुरु तो परीक्षित राजा और सुखदेव जी का नहीं है, जैन पुराण में नहीं है, अच्छा अन्य पुराण में बात कितना पड़ा हुआ है, 14 साल की उम्र में लिखा है, 24 साल में अन्य को अन्य का पुराना पुराण भी पढ़ लिया है, अनंत काल तक जीव यदि निज छंद से चलकर कितना भी परिश्रम करे तो भी अपने आप से ज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं होवे, परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मुख में केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञान या केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, शास्त्र में कही हुई आज्ञा परोक्ष है और जीव को अधिकारी होने के लिए कही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन करना चाहिए, यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी कही, ज्ञान मार्ग से जिसको अपना हित करना हो आगे बढ़ना हो तो ये ज्ञान मार्ग की एक श्रेणी है, उसको प्राप्त हुए बिना दूसरा मार्ग से मोक्ष नहीं है, कोई अपने दूसरा मार्ग ढूंढ ले होने वाला ये गुप्त तत्व है, दर्शन को मारने के लिए बहुत गंभीर और गुप्त बात है, गुप्त तत्व को जो आराधन आराधते हैं मैंने सत्पुरुष की आज्ञा में रहते हैं ये गुप्त तत्व है कहते हैं, और प्रत्यक्ष अमृत को पी करके अभय हो जाता है, अमर अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। बाहर में अपने काम की गरज होवे तो भंगी पीठ को भी साफ साफ करके अपना काम निकाले। सिविल ट्रस्ट के होते हैं कि नहीं, मिनिस्टर वगैरह बॉस वगैरह को होते हैं कि लाइसेंस की अथॉरिटी देने वाले। यहाँ जिनको अजर अमर पद की गरज नहीं, अपना हित करने की गरज नहीं, परिभ्रमण करना है। सत्पुरुष विद्यमान सत्पुरुष को पहचान करके उसकी आज्ञा में रहना, उसमें कितना आत्महित समाविष्ट है, यह गुप्त तत्व है। ऐसी बात है, यह गुप्त तत्व है। एक तो सत्पुरुष को पहचान नकल वाचर से रखना आज्ञा है, इतना बड़ा समाज है, इतने सत्पुरुष प्रत्यक्ष मिले, तीन तीन चार चार तो भी सत्पुरुष को पहचानना और इसकी महिमा क्या है, इसमें हित कितना है, वो बात हमारे समाज में शायद नहीं जानते हैं। समाज की परिस्थिति देखने में आइए, बात तो कहां से लिया, जो सत्पुरुष की सेवा में लगे हैं इनकी हालत देकर के बात चले। दूसरों की तो इतनी समर्पण नहीं है, जिसका अधिक से अधिक समर्पण दिखे उसको भी पहचान और पहचान से होने वाला लाभ उसका पता नहीं है, तो क्या गुप्त तत्व नहीं है क्या? समय सार नहीं पढ़ते थे सब, प्रवचन सार नहीं पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा,
नहीं
करता। गुप्त तत्व है, उसका आराधन करने वाला प्रत्यक्ष अमृत को पी करके अजर अमर पद को प्राप्त करेगा।
तो बात तो ये रही कि सनमन धर्म की उपासना छोड़े,
अधिकता छोड़े, कम से सत्पुरुष से ज्यादा अधिक अगर हो गया तो पहचान हो सकेगी। नहीं तो आपको बताया कि सत्पुरुष से अधिक रहा आरंभ परिग्रह कुटुंब परिवार आदि में होगा तो सर्व सत्पुरुष मिलने पर भी उसकी पहचान होने वाली नहीं।
आचार्य महाराज ने उपासना लिखा समय सार,
हाँ समय सार में लिखा है, समय सार तो पढ़ाए से मत नहीं पढ़ाए क्या,
एनलार्ज किया,
एनलार्ज कर दिया है। चौदह बातें लिखी एक सत्पुरुष के विषय में, देर बात करके चौदह बात में तो अमृत को पीता है, अमर होने के लिए अमृत को पीता है।
उपासना का जो अर्थ है उपासना वाला है, हाँ उपासना में भक्ति सिवाय और भी
कितना कितना समझ निकलता है, जो ये डिक्शनरी में से लिया है, नरेंद्र वर्णी का भी डिक्शनरी में दूसरा है। उपासना, उपासना में सेवा, सेवा का परिचर्या, आश्रयण, शरण में जाना, खिदमत करना, खिदमत की है उर्दू शब्द है, खिदमत खिदमत में प्रशंसा करना, बहुमान करना, आराधना, भक्ति करना और श्रद्धा करना, इतना निकलता है उपासना में। डिक्शनरी में तो इतना निकलता है, तो क्या कसर रही, कौन सी कसर रही। ये शब्दकोश जिनेन्द्र वर्ण का बहुत मेहनत किया है, सारे दिगंबर संप्रदाय के जितने आगम है उन आगम में जो भी पारिभाषिक शब्द प्रयोग है उसको अल्फाबेटिकली लेकर के किस शास्त्र में किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया है, सारा पैराग्राफ से पैराग्राफ देते हैं। उपासना, प्रवचन सार, तात्पर्य वृत्ति, 262 गाथा, 367 पेज, 12 नंबर की पंक्ति, इतना तरह का दिया है, प्रवचन सार का आधार दिया है। उपासनम शुद्धात्म भावना सहकारी कारण निमित्त सेवा, इतना संस्कृत पढ़ाया है हमें चंद्राचार्य का, तात्पर्य मिलती है
ना
प्रचंड आचार्य की। शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण रूप से की गई सेवा को उपासना कहते हैं। क्या शुद्ध आत्मा स्वरूप की प्राप्ति की भावना के सहकारी कारण रूप से इसी लक्ष्य से है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, ज्ञानी की उपासना में दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, उसी सेवा को उपासना कहने में
चंगा एम करवानी। हाँ कही
શ્રી અભય કુમારે ચિંતાનંદ સૈનિક રાજા જ્યાં સિંહાસન પર બેઠા હતા ત્યાં લાવીને સામે ઉભા રહ્યો અને સગળી વાત રાજાને કઈ બતાવી. એ વાત ની રાજાએ સિંહાસન ઉપર બેઠા ગુરુ ઉભા ઉભા થરથર ધ્રુજે, પણ તે બોધ લાગ્યો કેવું જોયું. 17 વર્ષે લીધું છે ઝડપથી ઉભા થી અભયકુમાર બોલ્યા કે મહારાજ, આપણે જો એ વિદ્યા શીખવી હોય તો સામા ઉભાર્યો અને એને સિંહાસન આપો, એને સિંહાસન ઉપર બેહાડો અને તમે સામે ઉભાર્યો. એ કે તો ઉભાર્યો, એ કે તો બેસો બેસે, પણ તમે સિંહાસન ઉપર બેહાડી ઉભા ઉભા તમને શીખડાવે અને તમને એ વિદ્યા ચડે એમ કઈ બને. ગુરુદેવ કહેતા કે ગુરુદેવ બહુ બધું દ્રષ્ટાંત આપતા, સમર્થ દ્રષ્ટાંત આપતા ગુરુદેવ. તો તીર્થંકર દેવ ના સમો શરણ માં 32 લાખ વિમાન નો સાહેબ, કે જેના એક એક વિમાન માં દેવો ની વસ્તી અસંખ્ય છે, અબજો ની નથી, કરોડો ની નથી, અસંખ્ય છે. અત્યારે તો 6 અબજ માત્ર દુનિયા આવી જાય, 6 અબજ માટે આપણી દુનિયા આવી જાય છે. એક એક વિમાન માં અસંખ્ય દેવો ની વસ્તી છે. અહીંયા તો બધા ગરીબડા હોય પાછા, ત્યાં તો બધા દેવો શ્રીમંતો. એવા 32 લાખ વિમાન નો સાહેબ માટે ધર્મ સભામાં ઠૂંઠ થઈને બેસવો નહીં એમ કેતા પાછા. કોઈ ચેષ્ટા જોઈ ગયા હતો કે ઠૂંઠ થઈને બેસવો વિનય વગર વિદ્યા ચડે. એને સિંહાસન આપો, રાજાએ વિદ્યા લેવા ખાતર એમ કહ્યું તો તત્કાલ વિદ્યા સાંજે થઈ. આ વાત માત્ર બોધ લેવા માટે છે, આપણને જોડેલી વાત બોધ લેવા માટે છે. એક ચાંદાળમાં પણ વિનય કર્યા વગર શ્રેણી જેવા રાજાને વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ તો તેમાંથી તત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કે સદવિદ્યાને સાજે કરવા વિનય કરવો. આત્મવિદ્યા પામવા નિર્ગમ ગુરુ નો જો વિનય કરીએ તો કેવો મંગળદાયક થાય. વિનય ઉત્તમ વશીકરણ છે, વશીકરણ છે, વિદ્યાને લઈ આવે એમ કે. જે વિદ્યા ગુરુમાં હોય એ શિષ્યમાં આવી જાય. ઉત્તરાખંડમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનો મોલ કરી વળ્યો છે, એટલે ઉત્તરાખંડ સત્તરમાં વચ્ચે વાંચી લીધું છે. આજે છે ને ગુરુ રહ્યા છે, મસ્ત પણ વિનય કરે ભગવાન, એ ઉત્તરાખંડ ની ગાથા છે. ઉત્તરાખંડમાં દસમી કાળમાં છે. ઉત્તરાખંડમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનો મૂળ કહીને ગણ્યો છે. ગુરુનો, મુનિનો, વિદ્વાનનો, માતા પિતાનો અને પોતાથી વડાનો વિનય કરવો એ આપણી ઉત્તમતાનો છે. સાચી જગ્યાએ વિનય કરવો. 17મા વર્ષે એમના વિચાર કેવા છે, આવી પુસ્તક લખ્યું છે, એ ઉંમરમાં પુસ્તક લખતા થઈ ગયા છે. ત્યાં સમયસારમાં એ વાત કરે છે ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય. આત્માનો એકત્વ સ્વભાવ સુલભ કેમ થયો નથી એનું કારણ બતાવે છે કે તને તો આનાથી આત્મજ્ઞાન નથી, પણ જેને આત્મજ્ઞાન છે એની ઉપાસના તે કરી. ન તો પહેલે કભી સુના હે, ન ઉપાસના, ન ઉપાસના સેવા ન કરને છે, ઓર એ ઉપાસના કે કાલ મેં કભી સુના ભી નહીં હૈ, એસે અનંત વાર સુના હૈ, લેકિન ઉપાસના કે ભાવ ને લેકર કે સુના નહીં હૈ. જો સુનાને વાલા હૈ ઉસકી ઉપાસના સેવા શ્રદ્ધા ચરણ મેં બેઠના એસા ભાવ મેં રહેકર કે સુના નહીં હૈ. ન પરિચય મેં આયા હૈ અનુભવ કા પ્રયોગ, ને પરિચય કા નહીં કિયા હૈ પહેચાન કરને કા, ઓર ન કભી અનુભવ મેં આયા હૈ. સુને, સુને કે બાદ પ્રયોગ કરે, પ્રયોગ હોવે તો અનુભવ और ये तीनों बात ले लिया, सुनना, सुनने से परिचय करने में प्रयोग करना, और प्रयोग करने से अनुभव होना।
उपदेशक
साचा उपदेशक आचरण करने वाला जो होय छे, खोटा उपदेशक आचरण करता नहीं। उपदेश जगत में बे जातना, एक ज्ञानियों ने एक अज्ञानी। ठीक है बच्चे, तुम्हारे अनुभव प्रकाश नाम शास्त्र है, अनुभव प्रकाश नाम शास्त्र अंदर श्रुत नो अर्थ कहो। श्रुत एट्ले शुं? अपने श्रुत ज्ञान कही है ने, श्रुत ज्ञान, श्रुत एट्ले सांभळवुं, तो के सांभळेलुं होय तेनुं अमलीकरण करवुं एनुं नाम श्रुत। अमल करवो क्यो, आचरण करवो क्यो, आदरवो क्यो, સાંભળેલાને એક્ઝિક્યુટ કરવું કયો, શું એનું નામ શ્રુત કહ્યું છે, એ વ્યાખ્યા કરે છે। ઉપદેશ આપવા માટે બંને માલ મળે છે, કે ગ્રહણ કરવામાં એક કણ કણ પરમાણુ ગ્રહણ નહીં હોતા, એનો કોઈ ઈલાજ નથી, એનો કોઈ ઈલાજ એ સૌ સુધી યોગ્યતા છે। ઓર કભી અનુભવ મેં આયા હૈ ઇસલિયે ભિન્ન આત્મા કા એકત્વ સુલભ, ઇસી કારણ સે અનુભવ નહીં હુઆ હૈ, જો પર સે ભિન્ન ઓર સ્વરૂપ સે એકત્વ રૂપ આત્મા હૈ ઇસકા અનુભવ દુર્લભ હો ગયા હૈ, ઇસકા યહી કારણ હૈ। शास्त्र ने मान्य है, वो बात आया कि नहीं आया, शास्त्र को ये बात मान्य है, श्रीमद जी ने 200 नंबर में लिखा है, वो बात
मान्य आया,
सब शास्त्र को मान्य है, समय सार में तो आता है, तो ये कहेंगे श्रीमद जी तो सत्पुरुष का बहुत लिखते हैं, लेकिन समय सार में कहाँ लिखते हैं, ये समय सार में चौथी गाथा में भावार्थ। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं, इस संसार की स्थिति वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, जोता जाता है इतने जोता जोतवामा आवे छे, जात जोत रहे छोड़ वो જોતા જતા એટલે જોત રે જોડવો, આ બળદને ગાડાના જોતરામાં જોડે છે, ખેતી કરવા માટે એને હળના જોતરામાં જોડે છે, એ જે બાંધવાનું સાધન છે, બળદને બાંધવાનું સાધન છે એને જોતરું કહેવામાં આવે છે, હિન્દીમાં પણ એ જ શબ્દ છે। સંસારી જીવ કો મોહ કર્મ ઉદય રૂપી પિશાચ કે દ્વારા, પિશાચ કે દ્વારા, પિશાચ એટલે बहुत भूत जैसा परेशान करने वाला जीव, उसको पिशाच कहने में आता है, भूत प्रेत पिशाच ऐसा जोता जाता है, आदत पड़ गई नहीं, पिशाच ऐसा है कि जीव बहुत दुखी होता है तो भी वो पिशाच दुखी होने वाला जीव पर थोड़ी भी दया नहीं करता, इसलिए उसको पिशाच कहते हैं। निर्दय रूप से जीव को दुखी करने वाला वो है, वो कैसा है, निर्दय रूप से जीव को दुखी करने वाला है, इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी लार से पीड़ित होते हैं। संसारी जीव वो से क्या होता है कि विषय तृष्णा होती है, विषय की तृप्ति होती नहीं है, कभी कभी होते हैं, और उस दाह का इलाज, उस दाह का उपाय इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं, विलास क्या है कि विषय को ग्रहण करना आप उसको देखती है, जीव है वो अनेक प्रकार के स्वाद को चाहती है, तो ऐसे वो विषय से अपना लाभ उठाने के लिए दौड़ते हैं, मारा मारा करते हैं, तथा परस्पर भी विषयों का ही निर्देश करते हैं, तो तुमको सुखी होना है तो ऐसा करो, ऐसा व्यापार करो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसे तुम्हें सब चीज मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाने से उसको जो भी जो तुम्हारी इच्छा है वो सब चीज तुमको मिल जाएगी बच्चे मिले के विषय। तो परस्पर भी विषयों का जो विदेश करते हैं, इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, जगत में यही सुनने में आता है कि कैसे काम करना, कैसे इच्छा बढ़ाना, कैसे अनेक प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए वो चीज यहाँ मिलती है, तुमको नहीं पता है मैं बताता हूँ, तुम वहां से मंगा लेना, तुमको चाहिए संसार में, तो यही बात मिलने वाली है। अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की, उनका प्रयोग भी किया और उसी का अनुभव भी किया, तो माँ भी सुना, प्रयोग किया और अनुभव किया, लेकिन लाइन दिया है उल्टा सुल्टा में, इसलिए जरूर है अगर तू आत्मकथा सुने, प्रयोग करे और अनुभव करे तो तुझे ये सुलभ हो सकती है, किंतु सर्वोपर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप कैसा आत्मा है, चैतन्य का चमत्कार संसारी दीनहीन प्राणी को सिद्ध पद में प्राप्त करा रहे, ऐसा चमत्कार जिसमें करा है, किंतु सर्वोपर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा ज्ञान, अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, अपने आप से तो ये होने वाला भी नहीं है, तो अपने से तो अपने आप में कभी नहीं हुआ और जिनमें वह ज्ञान हुआ है यानी उनकी कभी सेवा नहीं की, उनकी कभी सेवा नहीं की, सेवा नहीं की इसका मतलब ये सब के नहीं की वो बात नहीं है, हाल नहीं खिलाया वो बात नहीं है, पैर नहीं धोया वो बात नहीं है, पैर नहीं दबाया वो भी बात नहीं है, चरण में आश्रय करके रहा नहीं, उनकी सब बात को तने सुने श्रोता ने किया नहीं, कुछ माने कुछ नहीं माने, उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उनकी कथा को न तो कभी सुनी है, सेवा नहीं की इसलिए सुनी है, तो भी सुनी कर दी है, न तो परिचय किया है सुन करके, न तो उसका प्रयोग किया है, और फिर अनुभव होने का तो सवाल रहता नहीं, वो तो थर्ड स्टेज में आता है, इसलिए प्राप्ति सुलभ नहीं है, अनुभव तक नहीं पहुंचा इसलिए प्राप्ति सुलभ नहीं है, तो दुर्लभ है, ये बात जयचंद जी ने अपनी भाव से लिया। अब आचार्य कहते हैं कि इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का विकल्प बदलाते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि हमने इस भिन्न आत्मा का एकत्व हमने तो प्राप्त कर लिया है, ये विद्या हम जानते हैं, क्या तो विद्या हम जानते हैं, ये विद्या हमने ग्रहण की है, इसलिए आपको भी बतलाएंगे, નીકળે છે चरण में बैठकर सुना
जवाब ना सोचना है।
अगर सही भावना से सुना हो तो प्राप्ति हुए बिना है नहीं, योग मिला और प्राप्ति नहीं, उसका मतलब क्या? कि सुनने से के ढंग से सुना नहीं, सुनने के ढंग से नहीं सुना तो सुना ही नहीं, ऐसा कहने में ऐसा उसकी भाषा ऐसा कली काल में दुष्म काल में शत्रु का योग और सत्संग मिले और जीव तो धर्म दरिद्र रहे, दरिद्रता रहे, जीव दरिद्र रहे, दरिद्र मैंने पैसा वाला नहीं, धर्म की प्राप्ति नहीं हुए तो ये जगत का अज्ञानवा आश्चर्य है। दस आश्चर्य तो प्रतीक है, एक नया अज्ञानवा आश्चर्य है, ऐसे कलम कैसे चलाई है। बात कहने की एक पद्धति है, बहुत विशिष्ट पद्धति है। सतपुरुष मिला, एक शंकर मिला, अनंत गुरु भी अनंत द्वार, भावेंगी संत कुंकुंदाचार्य जैसे मिले अनंत द्वार, लेकिन अपने उसके शरण में रह करके जो ढंग से सुना चाहिए वो सुना, गलती अनंत द्वार ने की है। यही मतलब है, अब आइंदा ऐसी गलती होनी चाहिए नहीं, ये बात अवगणना की, अवगणना की है, उपेक्षा की है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा को तोड़ी है, आज्ञा विरुद्ध प्रवृत्ति और परिणाम किए हैं, ये बात करनी है। इसलिए बहुत बड़ा अपराध है और ये एक आराधना का एक अंग है, सामने सामने दोनों की कीमत समझ लेनी चाहिए। ऐसे सत्पुरुष के विनय को तप में गिना है, तपश्चर्या के लिए है, ब्रह्म का आनंद को हो, तप को हो, एक ही मत है। और आचार्य कहते हैं कि इसलिए जीवों को भिन्न आत्मा का एकत्व हम बतलाते हैं, अपनों सभी अवेन, मेरा वैभव समय होगा, शास्त्र में पढ़कर बोलने का वो बात नहीं है, अपने वैभव से होगा, यदि दाये जो प्रमाण चुके जो कलम न फेंका, क्या रेड लाइट लाल बत्ती रखा है, कहीं भी तुम छल मत ग्रहण करना, बताऊंगा बताऊंगा तो तू छल मत ग्रहण करना, कहीं भी आत्मा को नुकसान हुए ऐसा सूत्र कहीं भी तुम मत करना, सूत्र मत करना, ये छल है, एक दूसरा दृढ़ नहीं करता है, ऐसा समिसार में आप कहते हैं, पर साथ वो भी कहते हैं कि तुमने गुरु की सेवा नहीं किया, गुरु तो कुछ कर नहीं सकता, पत्र है, छल मत पकड़ना था भैया, तो उतर रातों में कहूंगा कि वो पत्र है या दुर्गल के परिणाम है, फिर कहूंगा आगे जाकर के राग में आदि मध्यंत में आत्मा नहीं है, राग में दुर्गल आदि मध्यंत में व्याप्त हुआ है, व्याप्त व्याप्त भाव आत्मा का, फिर कहूंगा कि आत्मा व्यापक होकर राग को करता है, नहीं मानेगा तो थैंक यू इसका परिणाम है, और फिर कहूंगा कि दुर्गल का परिणाम है, समय सार में चारों बात क्रम से आती है, पचास से लेकर सड़सठ तुगल के परिणाम के लिए, फिर कर्ता कर्म अधिकार में आदि में पिछोत्तर से ऐसे में लिया तुगल जाता है, जीव नहीं जाता है, और सर्व विश्व ज्ञान में कहेंगे ये जीव के परिणाम है, अगर नहीं मानेगा तो वो सांख्य मति हो जाएगा, आर्यन के मत का रहने वाला नहीं है, फिर कहेंगे अब क्या करेंगे, जिसको छल ग्रहण करना है वो तो ऐसा कहेगा कि कहने वाले का कोई दिमाग ठिकाने नहीं है, वही भाषा निषेध करता है तो बात पर विरोध होता है, ऐसी बात है शर्पत ग्रहण करना।
जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है
सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्माओं को दिखाऊंगा, आत्मा को दिखाऊंगा। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? मेरा आत्मा का जो निज वैभव है, मैंने शुद्धि का वैभव प्रकट किया है। दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, आचरण शुद्धि और आत्मा की शांति की, शुद्ध शांति की प्राप्ति, ये सब वैभव है। तो अनुभव में रह करके मैं शुद्ध आत्मा की बात बताऊंगा। अनुभव में रह करके दुबले को वहां से कहते हैं कि आचार्य महाराज ने समय सार कैसे लिखा है कि अनुभव में कलम को डुबो डुबो कर, लेखनी को अनुभव में डुबाई और फिर लिखा। नहीं हो जी ममत्तो न ममत्तो जानो विभाग में छिपे छिपे कैसा हो आएगी, ये पहले कैसा लिखा करके पहले गाथा रविमतो जानो गुरु छठी गाथा पहले। इस श्रीमद जी का बात को बताने का इतना सामर्थ्य है, श्रीमद जी का बात को बताने का इतना सामर्थ्य है कि आजकल बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग है उस पर एक प्रभाव पड़ता है। कोई है लिखने वाला, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग इस बात को स्वीकार करता है। ऐसा कोई किसी गुरुदेव कहते हैं पिछले सैकड़ों सालों में ऐसा पुरुष नहीं हुआ है। गुरुदेव का ये स्टेटमेंट है, 125 साल में नहीं, सैकड़ों साल में ऐसा पुरुष नहीं देखा। तो ये श्रीमद जी जिसको वंदन करता है, आचार्यो आपके वचन इस पावर को, क्या अपने को पावर बता दिया? जो श्रीमद जी के इतनी महिमा जिसको आती है लोगों को, या महापुरुष को भी, गुरुदेव को भी, गुरुदेव ने बोला था हमारे उपकारी है, इसलिए आप सबके भी उपकारी है। तो वो अपने को पामर गिना करके कुंकुंदाचार्य की महिमा करते हैं, तो वो कितने समर्थ होंगे देखो, कुंकुंदाचार्य की समर्थता कितनी होगी? एक शब्द में सागर, सागर में सागर बंदे, ऐसी कोई सामर्थ्य की बात है। अपना निज वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा। देखिए हमें ऐसा लेना है कि भगवान कुंकुंदाचार्य हमारे सामने बैठ करके हमें आत्मा दर्शाते हैं। अब हम आत्मा नहीं देखेंगे तो हमारे जैसा कम नसीब भी इसका होगा, ऐसा लेना है। भगवान कुंकुंदाचार्य खुद खड़े होकर के जब हमको नम भगवतो नम भगवतो जान को गुरु भाव दिखाते हैं, तो गुरु भाव को क्यों नहीं देखेंगे, ऐसा लेना है। गुरुदेव के बहुत साल पहले के प्रवचन पढ़े थे, नया नया मेरा एंट्री हुआ था, पीछे वाले प्रवचन सब पढ़ने लगा हमने, क्या क्या गुरु बोले हैं। अपन तो लेट हो गए और लेसन चल 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 गया, तो कौन सा पाठ चलाए देखे तो सही, पीछे के प्रवचन सब पढ़े तो उस पीछे एक प्रवचन ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था कि गुरुदेव अपने प्रवचन में यह कहते थे कि 2000 साल पहले समय साथ आचार्य देव ने पुनोरही में लिखा होगा, कहीं भी दक्षिण भारत में ठहर करके, लेकिन वो तो मेरे लिए लिखा होगा। क्या मैं 2000 साल के बाद पैदा होने वाला था, इस क्षेत्र में आने वाला था, इस क्षेत्र में, तो ये मेरे लिए लिख के गए हैं। क्या 2000 साल में किसी को देखा ही नहीं, अपने को देखा है, ऐसा बोले हैं। ये पण भगवान कैसे, हम पण कैसे, અને મારાથી જ વૈભવથી કહું છું એમ પણ કહે છે. બે વાત એક જ છે, અંદર નો ભગવાન છે નિજ વૈભવ માં, અને બાર માં શંકર ભગવાન છે. વાત બંને એક જ છે, બે વાત બે શબ્દ પ્રયોગ થાય છે. કેમ કે જો એકાંત એમ કહે કે હું તો કોઈની વાત કહું છું, મારા ઘરની વાત નથી, એનો અર્થ કે તે ઓછી ની લીધી છે, તને ખબર નથી એ વાત, તારો અનુભવ નથી, તારો અનુભવ એમાં નથી, તારો અનુભવ શું બોલે છે એમ કે મારો અનુભવ બોલે છે, ભગવાન તો કહે છે એ ઉપરાંત મારો અનુભવ બોલે છે. અને ગુરુદેવ ને ઈચ્છને છે એ નિકાલા કે તું ભી અનુભવ કરકે પ્રમાણ કરના, મેને અનુભવ સે બોલા હૈ તું ભી અનુભવ કરકે પ્રમાણ કરના, સ્વીકાર કરના, બિના અનુભવ સ્વીકાર હોગી નહીં વાત હમારી, હમારી વાત અનુભવ કી હૈ તો બિના અનુભવ સ્વીકાર હોને વાલી હૈ. વાત એસી હૈ કે અનુભવ સે હી સમજ મેં જ્ઞાન મેં આતી હૈ, બિના અનુભવ કે અનુભવ કી વાત જ્ઞાન મેં આતી બિના નયન પામે નહીં, બિના નયન કી અનુભવ કી વાત બિના નયન કી હૈ, પણ બિના નયન મેં અનુભવ, અનુભવ મેં નયન કી જરૂર નહીં હૈ. મેને એસા મેને વ્યવસાય મેને ઉદ્યમ ક્યા હૈ, નિર્ણય ક્યા હૈ, મેને એસા નિર્ણય ક્યા હૈ, યાને પ્રયાસ ક્યા હૈ કે અપને વૈભવ સે મેં શુદ્ધાત્મા કી, શુદ્ધાત્મા મેને સ્વરૂપ સે એકત હો ઔર દ્રવ કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મ સે વિભક્ત, વિભક્ત મેને ભિન્ન એસા આત્મા મેં દર્શાઉંગા. અભી ટીકાકાર આચાર્ય મહારાજ કહેતે હૈ કે મેરે આત્મા કા વહ નિજ વૈભવ ઇસ લોક મેં પ્રગટ સમસ્ત વસ્તુઓ કા પ્રકાશક હૈ. ક્યા મેરે આત્મા કા જો નિજ વૈભવ હૈ તો નિજ વૈભવ કૈસા હૈ ઉસકા વર્ણન કરેંગે. વૈભવ તો નિજ વૈભવ કા ભી થોડી પ્રસાદી થોડા સિમ્પલ મોટી મોટી બાત દિખાયંગે, ક્યોંકિ વૈભવ તો બહુ ગહેન ચીજ હૈ, અનુભવ કા વૈભવ તો બહુ ગહેન ચીજ હૈ, તો યહાં થોડી સી બાત અપને વૈભવ કે કહેંગે કે ઉસમેં નિમિત્ત કોણ થે, ક્યા ક્યા બાત રહી હૈ, ઉસમેં કોઈ ગલતી નહીં હૈ, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ, કોઈ વિશ્વસનીય હૈ, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ, એસી દો પાંચ બાતે જો હૈ વો ઇસ ટીકા મેં આચાર્ય મહારાજ કહેંગે.
દેવ નિધિ મંગળ